دستور ولایت آئے سو دستور ہدایت آئے سو.
آئی ایم ڈاکٹر مدثر رضا, میں پروفیسر نمل یونیورسٹی میاں والی. اس سے پہلے تقریباً 17 سال میں نے کامسیٹس یونیورسٹی میں گزارے, 1 سال ہائی ٹیک یونیورسٹی میں گزارا ہے. ورلڈ کے ٹاپ 2% سائنٹسٹ میں میرا نام آتا ہے. اب تک 3 PhDs کرا چکا ہوں, 5 PhDs میرے چل رہے ہیں. اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہیں تقریباً 15 PhD اسٹوڈنٹس ہیں میرے, جو جن کو میں گائڈ کر رہا ہوں. اور اسی طرح ایم فل ایم ایس کے تقریباً 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر چکا ہوں میں. اور یہ چھوٹا سا میرا تعارف, پاکستان نیشنل اسٹینڈرڈ کونسل کا ممبر ہوں, آئی ٹریپل ای کا سینئر ممبر ہوں. اور لیٹس اسٹارٹ مائی پریزنٹیشن. اوکے, سو اسٹوڈنٹس, کسی کو پتا ہے اے آئی کیا ہوتی ہے؟ جی, کوئی آئیڈیا؟ سب کے لیے نیا ٹاپک ہے. اوکے, اے آئی کا بیسک مقصد کہ وی آر لیٹنگ دا کمپیوٹر ٹو تھنک لائک ہیومن. ہم کمپیوٹر کو اس قابل کر رہے ہیں کہ ایک ہیومن بینگ کی طرح, انسانوں کی طرح وہ سوچ سکے, کام کر سکے. اگر یہ کام مشکل ہے, لیکن دنیا اب اس کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہے, اور اس سے ہم بہت سارے جو ہے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کا ٹاپک ہمارا اے آئی ٹولس کے اوپر ہے, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دینا چاہ رہا ہوں اے آئی کے بارے میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں, کہ یہ ایک ایسے کمپیوٹر سافٹ ویئرس, الگوریدمس, پروگرامس ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ہیومن لائک پروسیسنگ جو ہے اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک, فار ایگزامپل میڈیکل سائنس کے اندر ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک رول پلے کر رہا ہے. میڈیکل سائنس میں ایک جس طرح ہم ریموٹ سرجریز کر رہے ہیں, یہاں سے بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہم ایک آپریشن کر سکتے ہیں, سرجری کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر ابھی دنیا میں کام ہو رہا ہے. اسی طرح آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو مختلف ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے دیتے ہیں. ٹیسٹ کے اندر فار ایگزامپل برین ٹیومر ہے, تو برین ٹیومر کی ایک ایم آر آئی امیج ہے, اس کے اوپر پھر ہم اے آئی الگوریتھمس لگا کے آٹومیٹکلی بتا دیتے ہیں کہ ٹیومر کا لیول کس طرح ہے, کیا ہے. یہاں پہ ہم ایکچولی ڈاکٹرز کو ایک سیکنڈ اوپینین دے رہے ہیں کہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ ڈائیگنوسس جو ہے کوئی غلط ہو سکتا ہے, تو ایک دس از اے سیکنڈ اوپینین کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے اس پیشنٹ کو. اسی طرح ایک ایریا اے آئی کے اندر سرویلنس کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میری پی ایچ ڈی بھی سرویلنس کے اوپر ہے. سرویلنس کا مطلب آپ کے جتنے بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں, ان کیمراز نیٹورکس کے اندر, فار ایگزامپل اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو اسلام آباد میں بے تحاشا کیمراز لگے ہوئے ہیں. تقریباً اگر ہم کہیں 10,000 کیمراز ہیں, تو 10,000 مختلف, اگر اثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی سڑک پہ گزرے ہیں تو اوپر کیمرا لگے ہیں اور آپ کی گاڑی کے اوپر بلنک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ یہ ایک سیف سٹی ہے. اس سیف سٹی کا مطلب کہ گاڑی جہاں سے بھی آپ کے کیمرا کے اندر سے گزرتی ہے, وہاں پہ آپ کی ایک گاڑی کی آٹومیٹکلی پکچر لے لی جاتی ہے اے آئی الگوریتھم کے تھرو. اور آرٹیفیشیل الگوریتھمس اس پکچر لینے کے بعد آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ نکالتی ہے, اور تصویر کے اندر سے اس کا ٹیکس نکالتی ہے کہ نمبر کیا بن رہا ہے. اس نمبر کے اوپر آپ کی گاڑی کی اسپیڈ چیک کر کے اور آٹومیٹکلی آپ کے گھر چلان آ جاتا ہے کہ یہ گاڑی اوور اسپیڈنگ کر رہی ہے یا کوئی اور وائلیشن ہو رہی. تو اب یہ سارا کام اگر ہیومن بینگ کا کرنے کے لیے دیتے, تو کسی بھی شہر میں اگر 10,000 کیمراز بھی ہیں, تو 10,000 کیمراز کے اندر آپ کو 10,000 سیکیورٹی پرسنس کو بٹھانا پڑنا تھا. تو اب کیا ہوا کہ 10,000 کی بجائے صرف ایک سیکیورٹی پرسن, اور باقی اے آئی الگوریتھم صرف یہ بتا رہا ہے کہ کس کیمرے کے تھرو کون سی گاڑی کتنی تیزی سے گزری ہے, اور وہ چیز جو ہے ہمارے پاس فوراً اسی کے اوپر الارم جنریٹ ہو رہا ہے, اور اسی کے رزلٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور اسی کا آٹومیٹیکلی جو ہے چلان جنریٹ ہو رہا ہے اور آپ کے گھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سرویلنس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں کہ ہم کرائمس کنٹرول کر سکتے ہیں کیمرا نیٹورکس کے تھرو, اور اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں हमारे पास एटीएम की सिक्योरिटी आ जाती है, एटीएम मशीन्स के अंदर आप जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्राइम्स होते हैं, तो उसको भी आप कैमरेज के ऊपर एआई एल्गोरिथम के ज़रिए आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। एआई इस वक्त एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे रोबोट्स हैं, एग्रीकल्चर के रोबोट्स हैं जो हमारे पास फार्मिंग के लिए किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अब एक कॉन्सेप्ट आया था कि पाकिस्तान हमारे पास एक ज़रई मुल्क है और यहाँ पे एक चावल की फॉर एग्जांपल जो फसल है वो चावल एक मेन फसल है। अब उसके लिए अगर आपको पता होगा कि चावल पानी में उगता है, ठीक है, पानी के ऊपर चावल लगाया जाता है, लेकिन पानी क्यों दिया जाता है, चावल को पानी में इतना क्यों रखा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। और उसका आंसर ये है कि चावल जब पानी में लगाया, पानी के अंदर चावल को की फसल को खड़ा करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो मर जाती हैं, ठीक है, और जड़ी बूटियाँ जब मर जाती हैं तो चावल की फसल पानी में सर्वाइव कर जाती है और वहाँ पे आपका चावल उग जाता है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी किल्लत है तो वहाँ पे हम एक इस पानी को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं। और यही साइंसदान कहते हैं कि अगर हम पानी को कंट्रोल कर लें तो जो है पानी के बगैर जड़ी बूटियों को निकाल दें तो इसका मतलब हम चावल की फसल और भी अच्छी कर सकते हैं और पानी को भी सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीका तो ये आया कि आप जो है आप ये कर सकते हैं कि ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं कि जो आपकी फसल के ऊपर फिरेंगे और ऑटोमेटिकली एआई के एल्गोरिथम्स के थ्रू जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनको चेक करेंगे, पिक्चर लेंगे, एआई एल्गोरिथम बताएगा कि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी को फिर हम निकाल दिया करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट से। उससे होगा कि हमारे पास पानी की बचत हो जाएगी और हमारे पास चावल की फसल आराम से निकल जाएगी, ठीक है। दुनिया में इस तरह जिस तरह ये पिक्चर अगर आपको नज़र आ रही है, सेब की फसल है, सेब के अंदर हमने यहाँ पे रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा सेब पक के तैयार हो गया है, सिर्फ उसी को उतारा जाए और उसको ही खाने के काबिल बनाया जा सके। इसी तरह फिजिक्स के अंदर हमारे पास यही आ रही है। ये सारे आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि एआई इस वक्त हर एरिए के अंदर रोल प्ले कर रही है और यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स का काम आसान करके और क्विकली डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पहले एआई नहीं थी तो रोबोट्स थे लेकिन वो सही तरह काम नहीं करते थे, अब एआई आ गई, फिजिक्स के रूल्स आ गए तो हमारे पास रोबोट अब इस तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह एस्ट्रोफिजिक्स गैलेक्सीज को सर्च करने का काम 2022 तक जो साइंसदान है, अभी तक एक कंपनी थी जिसने अपने 66,000 एम्प्लॉयज़ हायर किए, उन 66,000 एम्प्लॉयज़ के ज़रिए ये कंपनी अमेरिका की तकरीबन 2.5 लाख गैलेक्सीज जो हैं कक्षाएं दरियाफ्त करने में कामयाब हुई, लेकिन सिर्फ 2.5 लाख। और तकरीबन उसके बाद 2022 से अब तक 2024 तक जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम इन गैलेक्सीज को सर्च करने में ढूंढने में जब इस्तेमाल हुए तो अब तक 2.5 लाख, वो 2022 तक था, और इन दो सालों में तकरीबन 20 अरब गैलेक्सीज को हम दरियाफ्त कर चुके दुनिया के अंदर। तो जहाँ 2.5 लाख था पीछे हम कई सालों से लग रहे सदियों से शुरू की हुई थी, अब उसके बाद सिर्फ 2 साल के अंदर 20 अरब हमने फाइंड कर ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आज मॉडर्न एआई का दौर, अब मॉडर्न एआई के दौर में हम जस्ट एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम दे रहे हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न आ रही है, वहाँ पर हम सिर्फ अब लिख रहे हैं और हमारे पास चीज़ें जो हैं मिलती आ रही है। अब सिर्फ प्रॉम्प्ट हम देते हैं, ऑर्डर लिखते हैं और उस ऑर्डर के मुताबिक जो हम चाहे, जिस तरह एक पिक्चर थी, इस पिक्चर के अंदर चीज़ों को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने जस्ट प्रॉम्प्ट लिखी और हमारे पास ये पिक्चर जो है मूवमेंट के अंदर हमें नज़र आ रही। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास बेसिकली ये एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू था कि हमारे पास हमारी लाइफ के हर एरिया के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इवन के आप अगर देखें इस्लाम 360 के बारे में, इस्लामिक स्टडी की, वहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ने हमारे इतना काम आसान कर दिए हैं कि हम किसी से भी अगर हमने डिस्कशन करनी है तो जस्ट वो टॉपिक लिखते हैं और टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जितनी आयात अहादीस हैं फौरन हमारे पास आ जाती हैं और उन्हीं को सामने रखते हुए हम किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो हर एरिया के अंदर, हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले करें। तो आज का बेसिक हमारे पास टॉपिक जो है, हमने थोड़ा सा देखा कि AI टूल्स जो है तालीम के अंदर, और आप सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्टडीज़ के अंदर AI टूल्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत आ सकती है, तो हमने उन टूल्स को थोड़ा सा आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो अभी तक जस्ट मैंने एक तमहीद बांधी एक AI के बारे में, जस्ट ओवरव्यू था कि AI क्या करती है, किस तरह करती है। अब हम थोड़ा फोकस होते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, और सब्जेक्ट में नॉर्मली यू आर ऑल द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तालीम में चीज़ें सीखना है। ठीक है, चीज़ें सीखने के बाद अगर हमारी लर्निंग अच्छी है तो हम आगे डिलीवर कर सकते हैं। इस लर्निंग के अंदर अब मुख्तलिफ टूल्स हो सकते हैं कि वो टूल्स क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ये हमारे पास। एक तो पहला टॉपिक हमारे पास आज आउटलाइन है कि इंट्रोडक्शन टू AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम 3 स्टूडेंट्स के लेवल को कवर कर रहे हैं, एक इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं, एक ग्रेजुएट लेवल को, और एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो होता है हमारे पास, या अंडर ग्रेजुएट, नॉर्मली उनको हम ग्रेजुएट भी कह देते हैं। ग्रेजुएट का मतलब सिंपल, यहाँ पे मेरा मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर PhD लेवल। इसके बाद एजुकेशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जो AI सपोर्ट भी हैं और AI की लर्निंग के लिए हमें फ़ायदा दे सकते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करें। फिर कुछ AI टूल्स जो रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमें ज़रूरी हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा हमने देखना। और उसके बाद एथिक्स, एथिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेगेटिविटी जिस एरिया में भी आ जाती है वो एरिया ख़राब हो जाता है, तो एथिक्स का मतलब कि AI ने चीज़ें हमारी आसान कर दी हैं, लेकिन उन AI के टूल्स को इस्तेमाल करके हम कहीं ऐसे तो नहीं हो गए कि हम माशरे के लिए एक नुकसानदेह साबित हो जाएं। ठीक है, तो और वो चीज़ें हमारे लिए भी एक मुश्किल हो जाएं, तो इसलिए इन एथिक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो AI टूल्स इन रिसर्च एंड एजुकेशन बेसिकली हम उसको देख रहे हैं, और दीज आर द एप्लीकेशंस, और हमें क्या क्या फ़ायदे दे सकती हैं। इनके थ्रू हम ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही हैं ह्यूमन बीइंग को यूज़ करने के बगैर। ठीक, और इन्हांसमेंट ऑफ द टास्क हमारे इन्हांस हो रहे हैं और टास्क आसान हो रहे हैं। ठीक, ओके, और ये सारे टास्क जो रिलेट करते हैं, इनसे हम 3 काम कर रहे हैं। एक तो हमारा फ़ायदा हो रहा है लर्निंग के अंदर। ठीक है, हम इन टास्क के ज़रिए एक अच्छी टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, और इसी तरह रिसर्च के अंदर AI हमें हेल्पफुल कर रही है इन टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू। फिर AI टूल्स जो है कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किन किन टेक्निक्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं, उनके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग की बेस के ऊपर ही सारा AI चल रहा है, और इसी तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किसी ने नाम सुना है चैट जीपीटी का? अच्छा, बहुत से बच्चे, और किसको नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या होती है, थोड़े से बच्चे चले आज आगे जाके देखते हैं। सो इट इज़ रेवोल्यूशन। इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इनको थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं. ओके एंड अदर ए आई ड्रिवन टेक्निक्स दैट टू प्रोवाइड इंटेलिजेंट एंड असिस्टेंट एंड डेटा ड्रिवन इन सेट. हम कई हमसे ए आई टेक्निक्स हमारे पास हैं जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं. अच्छा फैसिलिटेशंस इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमें क्या क्या फैसिलिटेशन मिल रही है. हम इनके ज़रिए अपने रिसर्च टास्क को आसान करने में कामयाब हो रहे हैं. एनालाइज कम्प्लेक्स डेटा. कम्प्लेक्स डेटा का मतलब ये है कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कोई डेटा है और फॉर एग्जांपल ट्विटर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डेटा है कि इसमें लोग कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर. तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये इस वक्त अगर 1 करोड़ बंदा किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है तो उस 1 करोड़ बंदे की हर बंदे की डिस्कशन को हम इंडिविजुअल पढ़ नहीं सकते. ठीक है, तो एआई के ज़रिए हमें ये पता चल सकता है कि ये सारे बंदे जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर लोग किसी नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, और जो है इसमें फर्दर बेहतरी की क्या चीज़ें हो सकती हैं या नहीं है, ये सारी एनालिसिस हम डेटा के ऊपर वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो लेकिन ये सारा काम पॉसिबल हुआ एआई के थ्रू. इसी तरह इम्प्रूविंग कोलैबोरेशन एंड रिसर्चर्स एंड एजुकेशन. ये सारा काम आज का मकसद कि वी आर द फैमिली, हम एक फैमिली हैं और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है. हम रिसर्च में कोलैबोरेशंस के अंदर जब तक हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, आइडियाज़ शेयरिंग नहीं करेंगे, हम अकेले कुछ नहीं हैं, हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते. तो एआई के थ्रू हम इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं. ओके सो 3 किस्म के टूल्स एआई के रिसर्च एजुकेशन इनोवेशन से रिलेटेड. सबसे पहला इंटरमीडिएट लेवल आ जाता है कि यहाँ पे बच्चे रिसर्च इतने ज़्यादा नहीं करते. ठीक है, तो इंटरमीडिएट का मतलब कि एफएससी से लेकर और पीछे प्राइमरी आ गया, उसके बाद जो है आपकी मॉन्टेसरी क्लासेस और किंडरगार्टन आ गया, सारा ये सारी ये आपका इंटरमीडिएट लेवल आ गया. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बच्चों के लिए ज़्यादातर टूल्स रिसर्च के नहीं होंगे, वहाँ पर आपके टूल्स लर्निंग के होंगे, सीखने के होंगे कि ये चीज़ें कोई चीज़ अगर आपने सीखनी है, कोई फिजिक्स के कोई एल्गोरिथम सीखने हैं, रूल सीखने हैं, लॉ सीखने हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कोई एआई के टूल्स हों जो हमें हमारे लिए आसानी पैदा कर. इसी तरह अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के टूल्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें स्किल्स सीखी जा सकती हैं और उनके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर रिसर्च और इनोवेशन आ जाती है. तो इन टूल्स को थोड़ी बारी बारी वन बाई वन देखते हैं. तो आउटलाइन का हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एजुकेशनल टूल्स कौन से हैं जिनके ज़रिए हम एआई सीख सकते हैं, या ऐसे एजुकेशनल टूल जो एआई के ज़रिए हमें लर्निंग सिखा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हमारे पास एफएससी और उससे पीछे जितने भी क्लासेज हैं उस लेवल के जो टूल्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट है खान एकेडमी. खान एकेडमी का किसी ने नाम सुना है? थोड़े से बच्चे हैं माशाल्लाह. चलें, सो खान एकेडमी एक अच्छा हमारे पास रिसोर्स है. यहाँ पे आपके पास छोटे लेवल से बड़े लेवल तक बच्चों के लिए एक हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड की गई है. हमारे पास लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ इवन कि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही किसी लेक्चर के दौरान भी, या कोई आपके जहन में कोई फार्मूला आ रहा है उसको सॉल्व करना है फिजिक्स का मैथ का, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चैट बोर्ड्स या डिस्कशन फोरम्स हमें ऑटोमेटिकली जो रोबोट्स हैं वो बैठे हुए हैं सॉफ्टवेयर रोबोट्स, वो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं. ठीक, तो इस खान अकेडमी के अंदर इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के अंदर आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किंडरगार्टन का लेवल का हो गया, बच्चों के लेवल का, छोटे बच्चों के लेवल का, दरमियाने बच्चों को, बड़े बच्चों के लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे उनकी पूरे पूरे कोर्सेज पढ़े हैं आप, और उन कोर्सेज को जब आप सॉल्व कर पढ़ते हैं तो हर किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो, आपके टेस्ट भी लेते हैं ऑनलाइन एआई टूल्स के ज़रिए, और जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एआई टूल से आप उसी वक्त पूछें तो उसी वक्त आपको एआई टूल्स आपको जवाब भी दे देते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स. अब इसके अंदर खान अकेडमी में एक खान मीगो के नाम से टूल है, ठीक है, जो आपके जो भी आप क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को वो सॉल्व करके आपको आंसर कर देता है, ठीक। तो खान अकेडमी के अंदर इसी तरह टीचर रिसोर्स अलग है, स्टूडेंट रिसोर्स अलग हैं, हमने सिर्फ लेवल सेलेक्ट करना है। लेवल सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि इस लेवल के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हम उसको सिलेक्ट करते हैं और उस सब्जेक्ट के ऊपर AI टूल्स के थ्रू पूरा पूरा कोर्स जनरेट होकर आपके पास आ जाता है। अब उस कोर्स के ऊपर वीडियोज भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उस कोर्स के ऊपर टेस्ट भी हैं, उस कोर्स के ऊपर आपकी क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी है कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और उस कोर्स के ऊपर आपकी इवेल्यूशन भी है कि जो आप टेस्ट देते हैं कि आपके कितने मार्क्स है, आप इस कोर्स में अभी भी पास हो रहे हैं कि नहीं। ये सारा जो है हमारा एक एजुकेशन रिसोर्स टूल है जो प्रोवाइड कर रहा है खान अकेडमी। अब टूल्स स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बेतहाशा टूल्स हैं, लेकिन हम उनमें से मेन टूल्स को सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत हैं, लेकिन जो भी हम सिर्फ यहाँ पे आपको बताने का मकसद कि आपको जस्ट एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि AI के अंदर बेतहाशा टूल्स हैं लर्निंग के लिए भी और उनके ऊपर काम करने के लिए भी, ठीक। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा भी अब आप सर्च करें गूगल पे तो आपको बेतहाशा और टूल्स मिल जाएंगे। तो खान अकेडमी से थोड़ा सा अब आगे आते हैं, ये हमारे पास खान, तो हमारे पास एक है सोक्रेटिक, socratic.org के ऊपर एक टूल पड़ा है, ये मोबाइल बेस है, मोबाइल बेस टूल है, और इसमें आपको स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए बहुत सी आसान चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। इवन कि आपके पास हम हाथ से कोई मैथ की क्वेश्चन लिखते हैं और हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसको हम क्या करेंगे कि सोक्रेटिक टूल के जरिए उसकी तस्वीर ले लेते हैं जो हाथ से ही लिखा हुआ है। ये टूल इस इक्वेशन को खुद ब खुद सीधा करेगा और उसको सॉल्व करके आपको बता देगा कि आपकी इस इक्वेशन का आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हम इससे पूछ के भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये दूसरी तस्वीर है, इसमें आप बता रहे हैं कि बताएं टूल को, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन में ये बताएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक। तो ये आपका टूल फ़ौरन उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं तो वो दिखा देगा, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं तो वो ट्यूटोरियल्स आपको सामने ला के दिखा देगा। तो एक लर्निंग जो है, रियल टाइम लर्निंग जो है, ये फ़ौरन हमें ये सपोर्ट कर रहा था टूल। इसी तरह dreambox.com के नाम से ये एक टूल है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, FSC तक के बच्चों के लिए, और ये आपको मैथ सिखाता है गेम्स के ज़रिए, ठीक है। आपके सामने मुख्तलिफ गेम्स आ जाएंगी, उन गेम्स के ज़रिए आप कुछ उन गेम को खेलेंगे और उन गेम्स को खेलने के बाद साथ साथ वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ से आप मैथ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश या कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं वहाँ पे आप उसकी लर्निंग कर सकते हैं। ड्यूलिंगो हमारे पास अगेन एक टूल, ये भी वेबसाइट है और इसके ऊपर जो है ये हमें फैसिलिटेट करता है कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम इंग्लिश को यहाँ पे सीख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जैसे हमसे लिखने का काम भी लेगा, हम लिख के भी चेक करेगा कि हमारी राइटिंग के अंदर इंग्लिश की क्या गलती है, ये आपको बताएगा। आप इससे इंग्लिश में रोबोट हैं बेसिकली, इससे आप इंग्लिश में बात करते हैं और बात करने पे ये वो चेक करेगा आपकी इंग्लिश लेवल को और उसमें आपकी गलतियां, फिर आपसे बात खुद भी ये टूल करेगा। तो जिससे बोल बोल के, लिख लिख के, सुन सुन के हम इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक। एलेक्स एक अदर टूल है, एलेक्स जो है हमारे पास मैग्रा हिल के नाम से एक पब्लिशर है इंटरनेशनल लेवल का, इसकी किताबें आती हैं मुख्तलिफ, तो मैग्रा हिल वालों ने एक अपना टूल बताया ताकि लोग इसके ऊपर भी सीख सकें ऑनलाइन। मैग्रा हिल के साथ साथ एक पियर्सन अगेन एक बुक कंपनी है और किताबें पब्लिश करती है, तो उसके नाम से उन्होंने अपना एक टूल बनाया था स्मार्ट स्पैरो के नाम से। तो यहाँ पे भी आप किताबों को पढ़ भी सकते हैं कि किताबों के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ जस्ट लिखें और वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास थोड़े से टूल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मिलियंस के अंदर होते हैं। तो थोड़े से टाइम के अंदर जितने भी हमारे जहन से गुजर गए, तो अभी तक हम जितने भी कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों को फोकस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट मैंने आपको फिर बताया कि FSC तक, पहली क्लास से या नर्सरी क्लास से FSC तक जितने भी बच्चे हैं वो उन सब के लिए ये टूल हमारे पास हेल्पफुल हो रहे हैं। अगले टूल जो रिसर्च रिसोर्सेज हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, हमारे पास ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट्स के अंदर जो है, अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये है कि जो BS लेवल की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो हमारे पास ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट और उससे ऊपर जितना भी है वो ग्रेजुएट आ रहे हैं। अब ये इन दोनों के टूल्स तकरीबन मुश्तरक होते हैं, मतलब ये लेवल तकरीबन करीब करीब है। तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास जो टूल्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा हम एक बाय वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल आ रहा है कोर्सेरा। कोर्सेरा किसी को पता है? चलें गुड हो गया। कोर्सेरा हमारे पास टूल है, ये हमारे पास लैंग्वेज के बारे में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है, उसकी जो है AI समेत जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, उनके टेस्ट वगैरह पढ़े होते हैं। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो HEC आपको इसको फ्री भी प्रोवाइड करता है। कुछ इसके कोर्सेज फ्री हैं, कुछ पे करने पड़ते हैं, तो वो पे भी आपको यूनिवर्सिटीज़ को HEC जो है ये टूल फ्री प्रोवाइड कर रहा है। और ये AI बेस्ड टूल है, आपकी जितनी भी लर्निंग होती है AI की बेस के ऊपर भी हो रही होती है, असेसमेंट्स हो रही हैं और आपको बता रहा है, और उसके बाद आप एक कोर्स मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अच्छी चीज़ ये कि इस वक्त ये दुनिया की जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज यहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो ये आपको उन टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी जो है वो कोर्स मुकम्मल करने पे सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उसका फ़ायदा आप कहीं भी जाएँ, आप बताएँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट हासिल किया, तो आगे आपको जॉब्स के लिए भी एक आसानी हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर हमें कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद भी बना सकते हैं, हम अपनी अर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं, अपनी हमारी जो चीज़ होगी वो हमारी पहचान भी बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास edx.org ये भी एक टूल जो कोर्सेरा की तरह मुख्तलिफ कोर्सेज यहाँ पर फ्री भी अवेलेबल हैं और कुछ आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कोर्स एक अच्छा कोर्स, एक अच्छी सर्टिफिकेशन के बाद आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं। इसी तरह यूडेसिटी अगेन कोर्सेरा की तरफ टूल। ठीक है, check.com ये हमारे पास फिर और टूल हमारे पास एजुकेशन पर्पस के लिए। और इसी तरह एजुकेशन पर्पस से अब हम और बहुत सारे आ सकते हैं, खान अकेडमी आ सकती है, ये सारे वो हमारे पास टूल्स अभी तक जो हमने डिस्कस किए कि जहाँ पे हम लर्निंग हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे AI की लर्निंग भी है और रिलेटेड जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की भी हम यहाँ पे लर्निंग हासिल कर सकते हैं। ठीक, आउटलाइन का तीसरा हिस्सा हमारे पास वो टूल्स आ रहे हैं जो AI और रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए हमें, AI के टूल्स हैं ऐसे जो रिसर्च इनोवेशन के लिए हमें फ़ायदेमंद हो रहे हैं। उनमें एक सबसे पहला टूल अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर का पता है? ठीक, गूगल स्कॉलर का मतलब कि हम जो भी रिसर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी जर्नल में, किसी मैगजीन में कहीं पब्लिश होती है, और वो सारी रिसर्च जो है अंडर दिस अम्ब्रेला गूगल स्कॉलर ने अपने पास एक गूगल स्कॉलर के नाम से वहाँ पे लाके रख दी है। और यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं, जैसे मेरा अकाउंट गूगल स्कॉलर पे जाके आप सर्च करें मुदस्सिर रज़ा लिखें तो मेरा आपको प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे मेरी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं रिसर्च की वो सारी एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाती हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है मैं ये सर्च कर सकता हूँ कि मैं किसी टॉपिक में मुझसे जो है मुश्किल फील हो रही है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसने इस एरिया में रिसर्च की हो, उस बंदे को हम सर्च करके उसकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी, उसकी प्रोफाइल जो है हमारे पास हम उसको ढूंढेंगे, उसके काम को चेक करेंगे, उससे हमें कोई गाइडेंस मिलेगी, फिर हम अपना काम कर सकते हैं, और इवन कि हम उस पर्सन से फिर कॉन्टेक्ट करके अपनी कोलैबोरेशंस की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक एआई टूल है जो आपकी रिसर्च को इंडेक्स भी कर रहा है, आपकी रिसर्च को सर्च करके भी ला रहा है, और आपकी प्रोफाइल के बारे में ये भी सर्च करके बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने देखा है, या आपकी रिसर्च को कितने लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर मेंशन किया, जिसको हम साइटेशंस कहते हैं। ठीक, तो गूगल स्कॉलर एक सबसे इम्पोर्टेंट आईटी टूल। इसी तरह हमारे पास आगे आ रहा है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ तो मेरी प्रोफाइल के अंदर मैं ये मेंशन करता हूँ कि मैं इस वक्त किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, और मेरे कौन कौन सी रिसर्च चल रही है, मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, और मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन कौन हैं जो मेरे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, कौन से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के वो हैं वहाँ पे। एक तो मेरी अपनी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, एक मेरी कोलैबोरेशन हो रही है, और एक मैं एक अपना क्वेश्चन रख सकता हूँ कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा तो ये कैसे परफॉर्म होगा रिसर्च के अंदर, तो और वहाँ पे हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते। ठीक, तो ये आपकी प्रोफाइल में आपकी वर्ल्ड की रैंकिंग बता रही है। ठीक है, जिस तरह रिसर्च गेट के अंदर अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी प्रोफाइल इस वक्त दुनिया के टॉप की 3% के अंदर जो साइंटिस्ट हैं मैं उनके अंदर आता हूँ अकॉर्डिंग टू रिसर्च गेट। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल इनसे ऊपर है, तो यहां से मुझे पता चलता है। इसी तरह हम अपने जब रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो रिसर्च पेपर में हम दूसरे के कामों को मेंशन कर रहे होते हैं कि ये अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो ये बात इस बंदे ने कही है। ठीक, तो अब ये सारी चीजें जो है मैनेज करने के लिए हम अपने पेपर के अंदर साइटेशंस डालते हैं, साइटेशन नंबर 1, और ये बात जो है फ्लॉ पेपर के फ्लॉ ऑथर ने की। ठीक, तो अब उस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसे टूल्स जो हमारे पास रेफरेंसिंग टूल्स भी कहलाते हैं अपनी रिसर्च के अंदर करते हैं, ताकि उससे हमारे पास चीज़ें ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाती। ठीक है, और उनमें से एक टूल की पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास एन नोट टूल है। इसी तरह और बहुत सारे हैं, ज़ोटेरो के नाम से, मेंडले के नाम से, जैबडेप्स के नाम से बहुत सारे टूल्स आपको अवेलेबल हैं। एन नोट का अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं तो एन नोट के अंदर हम जो है सारी साइटेशन जितने भी हम अपने पेपर रिसर्च पेपर के अंदर साइटेशन या दूसरे लोगों का काम मेंशन करना चाहते हैं उन तमाम पेपर्स को एक जगह डाउनलोड करके ले आते हैं, और इसके बाद जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके और अपने वर्ड फाइल्स के अंदर सिलेक्ट करके इसको पेस्ट करते हैं, और वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हमारे पेपर के अंदर साइट हो जाती हैं। इसी तरह हम जो रेफरेंसिंग के बाद एआई रिसर्च असिस्टेंट में हमारे पास ऑटोमेटेड समराइजेशन एंड टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक, अब हमारे पास एक टूल अभी जिसका मैंने जिक्र किया था चैट जीपीटी का। अब चैट जीपीटी क्या है कि एक ऐसा टूल है एआई टूल के जिसके अंदर जैसा गूगल की तरह एक जस्ट आपके पास सर्च इंजन टाइप ही होता है, लेकिन ये एक रोबोट है। ठीक, और ये रिपोर्ट क्या कर रहा है कि इसको हम जस्ट लिखते हैं अपने कोई भी बात कि मैं जो है मुझे इस एरिए के अंदर जो है अपना रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल लिखना है तो मुझे गाइड कर दो। ठीक है, या इस टॉपिक पे मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो मुझे गाइड करें कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, ये क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, वो आपको सारा गाइड कर दे। इसके अंदर आप क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ द सर्कल का ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका आंसर क्या होगा, वो पूरा सॉल्व करके आपको चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली दे देते हैं। ठीक है, तो जो भी आप करते हैं इनको हम यहाँ पे चीज़ों को जो सहन में आ रहा है अपना क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन हमें उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी की ही एक और छोटी सी एक्सटेंशन है, जब चैट जीपीटी का आप पेज खोलते हैं लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक स्कॉलर जीपीटी आ रहा है। स्कॉलर जीपीटी में क्या हमने किया कि मैंने अपने रिसर्च पेपर के अंदर एक लिटरेचर रिव्यू करना है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक पेपर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसमें आइडिया नहीं हो रहा कि वो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, उस पेपर के फ्लॉज क्या हैं। तो मैंने क्या किया कि स्कॉलर जीपीटी पे गया, स्कॉलर जीपीटी पे जाके उस रिसर्च पेपर का सिर्फ लिंक दिया कि ये पेपर यहाँ पड़ा हुआ है और मुझे बताएं कि अब इस पेपर के अंदर एक समरी करके बताएं कि क्या है। ठीक है, तो स्कॉलर जीपीटी जो है हमें उस पेपर की समरी निकाल के दे देता है। ऑटोमेटिकली पूरे पेपर को खुद पढ़ेगा सॉफ्टवेयर और उसमें से जो इसकी समरी है, इसकी चीज़ें क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, जिसरा ये मैंने सिर्फ ये लिखा था कि ये लिंक है और ये लिंक के अंदर मुझे इसकी समरी निकाल के दें और उस लिंक के जरिए इसने खुद ही पढ़ा और आगे सारे पॉइंट्स के अंदर उसकी स्कॉलर जीपीटी ने समरी निकाल के दे दी। ठीक है, तो ये हमारे रिसर्च के अंदर ये टूल एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। स्कॉलर जीपीटी के बाद जब अगर हम आए, बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं, कोई बच्चे? बहुत सारे हैं, गुड, हो गया। चले, कंप्यूटर साइंस में अब एआई के अंदर टूल्स को यूज करना है, एआई की प्रोग्रामिंग करनी है, तो कोई ना कोई टूल है, बेतहाशा टूल्स हैं। उनमें से एक सिमुलेशन टूल हमारे पास मैटलैब है और बाकी प्रोग्रामिंग टूल्स और बहुत सारे आ सकते हैं, पाइथन के आ सकते हैं, टेंसरफ्लो आ सकता है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैटलैब है तो मैटलैब के अंदर बहुत सारी एप्स मौजूद हैं बनी बनाई, जहाँ पे हम जस्ट सिर्फ डेटा देते हैं, इमेजेस देते हैं, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस वो खुद करके हमारे पास वो टूल दे देते हैं मैटलैब के। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास बेतहाशा और सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सिर्फ चीज़ें आपको एक नज़र आपकी आंखों से गुजार रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इन द शॉर्ट टाइम। इसी तरह ये हमारे पास टैबलियो है। टैबलियो का मतलब कि एक हॉस्पिटल का डेटा कि हॉस्पिटल में इतने मरीज आए, उन मरीजों को ये बीमारी थी, उनके ये सिम्टम्स थे, उन सिम्टम्स के ऊपर बेस करते हुए ये हमारे पास डेटा एनालिसिस। तकरीबन अगर फॉर एग्जांपल 11-12 लाख का या 1 मिलियन का डेटा था, तो 1 मिलियन डेटा के ऊपर हम सारा एनालिसिस खुद नहीं कर सकेंगे, तो उस एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। उन विजुअलाइजेशन टूल्स के ऊपर डेटा रखेंगे और विजुअलाइजेशन टूल्स उसी के ऊपर हमें ग्राफ्स ऑटोमेटिकली बना के दे देंगे, चार्ट्स बना देंगे और बता वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। इसी तरह नोशन, नोशन एक और वेबसाइट चैट जीपीटी टाइप ही है। ठीक है, और इसमें आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस कर सकते हैं। इवन के एक अच्छा टूल है जिसके ज़रिए कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट कहता है कि मुझे इस चीज़ का कोड जनरेट करके दे दें। ठीक है, तो वो उस पूरा पूरा प्रोग्रामिंग का आपको कोड जनरेट के मिल जाएगा यहाँ पे कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ द सर्कल ही अगर हम बात करें कि उसका मुझे प्रोग्राम बना के दे दें, तो ये आपको पूरा पूरा प्रोग्राम बना देगा। ठीक है, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हमें छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, उनको हम तराश कराश करके सही करके और उसको कर लेते हैं। यहाँ पे एक अगेन वही बात कि चैट जीपीटी, नोशन, बीइंग अ रिसर्चर, मैं एज अ साइंटिस्ट इसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। ठीक है, कि स्टूडेंट्स इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, एज इट इज़ यूज़ करते हुए जब आप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एथिक्स के खिलाफ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, तो वो उनको आगे जाके देखते हैं ताकि हम इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। ठीक है, टूल्स अच्छे हैं, हर एक को सीखने चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए कैसा है, लेकिन इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप जो है एथिक्स को ख़राब नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करते हुए जो है, ताकि आपकी एक आइडेंटिटी बनी रहे, किसी भी लाइफ के किसी मुकाम पे आप नेगेटिव हो गए तो वो आपकी सारी कैरियर के लिए चीज़ ख़राब हो जाती। ओके, इसी तरह टर्निटिन, किसी ने टर्निटिन यूज़ किया है? एक दो बच्चे। टर्निटिन का मतलब ये है कि आप लोग जो है अपना जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जो असाइनमेंट्स देते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखता है, तो इन रिसर्च पेपर्स के अंदर हो सकता है कि आपने कुछ टेक्स्ट कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो। ठीक है, कॉपी पेस्ट जो है कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया होगा तो टर्निटिन आपको बता देगा कि ये कॉपी पेस्ट एक्चुअली है कहाँ से। ठीक है, तो जिस तरह हमने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है टर्निटिन को दिया, टर्निटिन ने ये बता दिया कि राइट साइड पे आपको पता चल रहा है कि ये इस डॉक्यूमेंट में ये लाइन इस वेबसाइट से या इस डॉक्यूमेंट से कॉपी हुई हुई है। ठीक है, और इतने परसेंट कॉपी हुई हुई है, तो ये सारा जो है आपको टर्निटिन बता रहा होता। ठीक है, टर्निटिन के अंदर आजकल एक इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जो है टेक्स्ट एआई टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, चैट जीपीटी से टेक्स्ट निकाला, कॉपी पेस्ट करके अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर डाल दिए, अपनी असाइनमेंट्स के अंदर डाल दिए, ठीक है। और तो हमारे पास टर्नटिन एक ऐसा टूल के इसके ज़रिए जो है हमें वो भी बता देता है कि आपने एआई का जो टेक्स्ट डाला है वो आपके कितने परसेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाला है तो इसके अंदर 48% कॉपी पेस्ट आ रहा है कि आपने चैट जीपीटी से उठाया है, ठीक है। तो अब दिस इज़ अ सिनेरियो कि हम मैं जिसके खिलाफ हूँ कि आप चैट जीपीटी से कॉपी करके अपने पेपर्स में डाल देते हैं और बाद में फिर किसी लाइफ के उसके अंदर पकड़े जाते हैं और पकड़े जाए तो इसका मतलब कि आपका सारा कैरियर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा ख्याल भी रखना। तो टर्नटिन इज़ अ इम्पोर्टेंट टूल आपकी रिसर्च के लिए। जब आप काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना काम कॉपी पेस्ट किया और कितना अपना खुद किया। AI टूल फॉर ग्रामर चेक, हम जब भी कर रहे हैं तो बीइंग एन एशियन हमारे पास हमारे ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इंग्लिश सही नहीं लिख पाते, ठीक है। तो हमारे पास एक टूल ग्रामरली का आ गया। ग्रामरली पूरा पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर हमें बता देता है, ये जो लाइन हाईलाइट्स हुई हुई है तो पता चल रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश की कोई मिस्टेक है, उसको क्लिक करते हैं तो ग्रामरली हमें सजेशन दे देता है कि इसको ऐसे करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ग्रामरली के साथ साथ हमारे पास क्विलबोट हमें ग्रामरली सिर्फ टेक्स्ट पूरा सही कर देता है एक दफ़ा, लेकिन क्विलबोट हमें सजेशन दे देता है कि ये लफ्ज़ हैं, इस अल्फाज लफ्ज़ को मैंने चेंज करना है तो उसमें और क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं, वो एक से ज़्यादा उन अल्फाज की ऑप्शन दे देता है और वहाँ से हम उसको अल्फाज को चेंज कर सकते हैं। क्विलबोट के बाद हमारे पास एथिक्स आ गए, ठीक है। एथिक्स का मतलब अगेन कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें किसी दूसरे का काम शो करा के ये नहीं करना कि ये मेरा काम है, ठीक है। और एक अपनी आइडेंटिटी, एक जब अपने पर्सनैलिटी को शो कर रहे हैं आप तो एआई के अंदर एथिक्स के बहुत सारे इशू आ रहे हैं। चैट जीपीटी इस्तेमाल किया, चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के बाद उसका टेक्स्ट जो उठा लिया, कोड उठा लिया, अब चैट जीपीटी भी कोड ज़्यादातर खुद जनरेट नहीं करता, वो किसी बंदे ने कहीं कोई बात भी आपस में डिस्कशन में की होगी तो वहाँ से उसका कोड उठा के चैट जीपीटी ले आता, ठीक है, टेक्स्ट ले आता है। तो ये सारे टेक्स्ट जो हैं आपके सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, इसको लिखें आप अपने अल्फाज में, अपने अल्फाज में अपना इजहार करें इसके ऊपर, ठीक है, ना कि वही टेक्स्ट उठा के सारा आप यूटिलाइज कर, ठीक। तो इसमें हमारे पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं एआई की कि जब भी यूज़ कर रहे हैं तो एथिकल कंसिडरेशंस को हमने लाजमी अपने साइन में रखना है, नहीं तो हमारा सारा कैरियर ख़राब हो सकता है। कैसे हो सकता है? रिट्रैक्शन से। किसी को पता है रिट्रैक्शन क्या होती है? रिट्रैक्शन, ओके, रिट्रैक्शन का मतलब आप गूगल पे लिखें जाके, गूगल स्कॉलर पे जाएं, google.google.com, वहाँ पे जाके लिखें रिट्रैक्टेड। रिट्रैक्टेड का मतलब बहुत सारे पेपर लिखे हुए आ जाएंगे उनके पीछे एक रिट्रैक्टेड। अब रिट्रैक्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है रिट्रैक्शन की, ठीक है। वो आपके जो पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं कौमी लेवल के ऊपर, बैनल कौमी लेवल के ऊपर, तो उन सारे को पढ़ते हैं लोग पढ़ने के ऊपर, और मुख्तलिफ एआई टूल्स ही खुद चेक करके बता रही होती है कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ये कहीं टेक्स्ट जो है ख़राब तो नहीं लिखा हुआ। तो अभी रिट्रैक्शन का मतलब कि अगर आपने चैट जीपीटी से किसी दूसरे के रिसर्च पेपर से कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके अपने पेपर में डाल दिया है, इसका मतलब आपने एक क्राइम किया है, ठीक है। तो अब ये चेक करेगी, चेक करने के बाद आपके पब्लिश पेपर के ऊपर रिट्रैक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, और रिट्रैक्टेड का मतलब कि जो आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की थी, फॉर एग्जांपल 100 पेपर अगर आपने लिखे थे तो रिट्रैक्शन ऑर्गेनाइजेशन आपके 100 पेपर दोबारा चेक करेगी कि अब हम शक हो गए इस पेपर पर, तब इसके सारे पेपर्स को चेक किया जाए कि इसमें कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की एक एग्जांपल भी है कि एक प्रोफेसर थे कि जिनके ऊपर उन्होंने रिसर्च पेपर्स के अंदर थोड़ी सी डिसऑनेस्टी एक के अंदर दिखाई थी, पकड़े गए, और उसके बाद HEC ने, गूगल ने, तमाम जर्नल्स ने तमाम के तमाम पेपर्स रिट्रैक्टेड कर दिए। तो रिट्रैक्टेड होते किस वजह से, ठीक है, आपका रिसर्च पेपर एक से ज़्यादा जगह पर पब्लिश हुआ, ठीक है, आपकी पब्लिकेशन ओवरलैप्स, आपने किसी का टैक्स उठा के अपने काम में डालो, छोटा सा टैक्स ओवरलैप हो रहा है, ठीक। इसी तरह कॉम्प्रोमाइज रिव्यूज़, आप जब पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो बहुत से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रिव्यूअर्स हैं जो आपका पेपर पढ़ते हैं, उसको एसेस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब इसको पब्लिश किया जाना चाहिए, तो फिर वो आपका पेपर पब्लिश होता है। तो कॉम्प्रोमाइज रिव्यू का मतलब किसी हमने अपने किसी दोस्त को पेपर भिजवा दिया और उसने जो है दोस्ती यारी के चक्कर में ही आपका पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है। और इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड वर्ड, फ्रस्ट्रेटेड वर्ड ये हैं कि जो यूनिवर्सल वर्ड होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की जबान में एक क्लासीफायर, उसका नाम है स्पोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक, या न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करूँ तो उसके अंदर स्टोचेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसे यूनिवर्सल वर्ड्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और हमने गमरली लगा के क्विल बोर्ड लगा के उन वर्ड्स को भी चेंज करके डाल दिया, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड वर्ड आपको आपके काम को बर्बाद कर सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं, तो हमने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल करना। प्लेजरम, प्लेजरम का मतलब अगेन आपने किसी के काम को कॉपी किया। तो ये देखें जिस तरह गूगल में हमारे पास सिर्फ आपने रिट्रैक्टेड लिखा तो रिसर्च पेपर्स के नाम के आगे से साथ साथ रिट्रैक्टेड आ रहा है, इसका मतलब कि ये रिसर्च अब ज़ाया हो चुकी है और ये ऑथर के ऊपर पेनल्टी डल सकती है, इवन कि यहाँ पे आपकी पीएचडी डिग्रीज भी कैंसिल हो जाती हैं छोटे से काम से कॉपी पेस्ट के ऊपर। ओके, पब पीयर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बता रही होती है कि आपके काम जो आप पब्लिश कर चुके हैं उसमें आप का कितना फेयर काम है कितना गलत है, वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, आर्टिफिशियल टूल्स इंटेलिजेंस टूल्स हैं जो आपको काम को चेक करके ऑटोमेटिकली आप लोगों को बता रहे थे कि इनके काम में कितनी जेन्युइननेस है। ओके, मूविंग टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबल AI, तो हमें AI एक दुनिया में इनकलाब लेके आ रही है, वंडर्स लेके आ रही है, ठीक, लेकिन इस AI के साथ इसके नुकसानात भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल AI की तरफ जाना है, इन टूल्स को यूज़ करें, सीखें, अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे किसी का काम को आपने ये नहीं कहना कि ये मेरा काम है, उसको प्रॉपर उसको जस्टिफाई करें। और ChatGPT से अगर आप डाटा उठा रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि टीचर ने दे दिया असाइनमेंट तो आंखें बंद करके ChatGPT को दे दिया और वहां से आपने टीचर्स को जमा करा दिया असाइनमेंट, यहां पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी ख़राब कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप बेशक ChatGPT को यूज़ करें लेकिन सीखने के लिए कि वो क्या कहता है और मैं इससे सीख क्या सकता हूं और फिर अपना काम खुद करें, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी जब तक आप नहीं बनाएंगे उस वक्त तक मैं ChatGPT के खिलाफ हूँ कि जब तक आप असाइनमेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं यानी आपने अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी, ठीक है। तो बीइंग अ फैमिली, मेरी सजेशन हर बच्चे को यही होती है कि इन टूल्स को लाजमी सीखें, ठीक है, इन टूल्स के अंदर लर्निंग भी लाजमी करें, लेकिन एथिक्स के ऊपर रहते हुए, एथिक्स खराब नहीं होना चाहिए कि इज्जत बनते हुए सदियाँ लग जाती हैं, ख़त्म होने में सेकेंड नहीं लगता, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर माई प्रेजेंटेशन।
डॉक्टर प्रोफेसर मुदस्सिर अल्लाह साहब की सेहत और सलामती के लिए बवाज़े बुलंदर सलावात हुमा सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाचिल फरजों। अच्छा, किसी ब्रदर का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, किसी ब्रदर का कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस लर्निंग से मुतालिक, तो वो पूछ सकते हैं अभी। किसी ब्रदर का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें, पूछ सकते हैं अभी सवाल।
अस्सलाम वालेकुम, मैं बावलपुर से हूँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर।
जी बेटा,
तो सर आपसे पूछना ये है कि हम GPT से डाटा को एक तो मोर डाटा कैसे कर सके, क्योंकि हम तो वो हमें मिनिमम डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसको किस तरह हम यानी कि मैक्सिमम डाटा वहाँ से हम कवर कर सकते, ये बता दें।
देखो स्टूडेंट्स, एक तो आप अक्सर ना स्टूडेंट्स हमारे पास भी बीइंग अ टीचर हम असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ले आते हैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह, ठीक, वहाँ से हमें देखते ही पता चल जाता है ChatGPT की, ठीक है, स्टूडेंट्स का इंग्लिश का लेवल नहीं सही होता, ChatGPT की बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि हमें पता चल जाते हैं कि ये वर्ड यूज़ हुआ हुआ है तो पक्का ChatGPT, ठीक है। चलें, डेटा अगर आप लेके आना चाहते हैं, देखें एक होता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड हम ChatGPT को कह सकते हैं पहले तो कि इस एरिए की पहले तो नो हाउ दें, ठीक है, अगर इसको आपने यूटिलाइज करना है ना कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, इवन के बुक भी बनाने के लिए, तो उसमें ये किया जा सकता है कि आप पहले कहें कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक की मुझे आउटलाइन दे दें, ठीक है। अब जब आउटलाइन आती है तो वो एक लिमिटेड आउटलाइन आती है, मतलब चैट जीपीटी के भी अल्फाज एक लिमिटेड हैं, उससे ज़्यादा वो टेक्स्ट नहीं देता आपको, ठीक है। लेकिन एक पेज जब आपका खुल जाता है तो अब आप उसको आउटलाइन का कहते हैं, आउटलाइन जब आ जाती है तो उस आउटलाइन के हर टॉपिक के ऊपर जो है आप वन बाय वन जो है उसको कहें कि इसको भी एक्सप्लेन करें, इसको भी एक्सप्लेन करें, इसको भी एक्सप्लेन करें, तो उसके ऊपर वो आपका टेक्स्ट बढ़ता जाता है। फिर वहाँ पे हर टॉपिक के जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं, उन कीवर्ड्स को आप कह सकते हैं वहाँ। उसके बाद यहाँ पे एक सारा एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो इसके बारे में फिर हम ये कह सकते हैं कि रिसर्चर ने इसके बारे में क्या कहा विद रेफरेंस आप बताएं, ठीक है। वहाँ से आपको फर्दर रेफरेंस निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आइडियाज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मुझे कोई कोड चाहिए तो कोड भी आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन ये सारा सिनेरियो ऊपर से नीचे तक आपको एक पूरा कंप्लीट रिसर्च पेपर बना हुआ मिल गया, डॉक्यूमेंट मिल गया, लेकिन वो आपका नहीं है, ठीक है। इस और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी फौरन पकड़ा जाता है चैट जीपीटी का, कि चैट जीपीटी का एआई टूल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो अब उसको अब आपने सीधा करना है, रिफ्रेजिंग करनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है। मैं एक चीज़ बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये कहूँगा कि अब एक बात किसी ने कही भी है यूनिवर्सल लाइन, ठीक है, उस यूनिवर्सल लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, ए को बी कर दिया, बी आया तो सी कर दिया, ताकि वो आपका कॉपी पेस्ट ना हो। लेकिन ये कॉपी पेस्ट ऐसा ये है कि ये प्लेजरिज्म की वो टाइप है कि ये सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव होती है, कि आपने किसी के काम को वर्ड चेंज करके तो शो करा दिया लेकिन उसके काम को मेंशन नहीं किया कि ये बात उसने की, या आप कह रहे हो तो इसका मतलब लाइफ में कहीं भी किसी ने आपको पूछ लिया कि ये आपने कैसे कह दिया ये काम तो इसका था, तो फिर आप जॉब नहीं दे सकते इसका, ठीक। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल टॉपिक, कि पहले तो टॉपिक को रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद अब इस टॉपिक की आउटलाइन कैसे जनरेट होगी, आउटलाइन के बाद आउटलाइन के हर हेडिंग के ऊपर आप अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चन से फर्दर और क्वेश्चंस करते हुए आप पूरी एक किताब भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अमेजोन के ऊपर इस वक्त कई लोग कमा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ है कि चैट जीपीटी को लिखा है कि आज शेर और बिल्ली की कहानी लिख दो, वहाँ से शेर और बिल्ली की कहानी लिख देता है। एक मिड जर्नी टूल है, मिड जर्नी टूल के ऊपर वो जो कहानी के ऊपर जो जो मेन मेन अल्फाज थे उनके ऊपर वो मिड जर्नी टूल एआई टूल ऑटोमेटिक तस्वीरें जनरेट कर देता है, और वो करते हुए एक पूरी कहानी बन जाती है। और इस तरह कई लोग हैं जो मिलियंस और बिलियंस अमेज़न के ऊपर कमा चुके हैं, जो स्टोरी बुक्स इस तरह की बना के पब्लिश कर चुके, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर हम इनको अगर देखें तो चैट जीपीटी और सारी चीज़ें पॉजिटिव तो पे हमें बहुत हेल्पफुल कर देती, ठीक हो गया।
थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर।
अलेक्स नाम
जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से BSAI का स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो हमारे पास चैट जीपीटी है,
थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाओ वहाँ पे मेरे ख्याल में सिग्नल का इशू आ रहा होगा।
एक
और आगे आ जाओ।
अच्छा, हमारे पास जो चैट जीपीटी है सर, ये सुपरवाइज लर्निंग यूज़ कर रहा है या अनसुपरवाइज? क्योंकि अगर ये सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ कर रहा होगा तो ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोग इसे एक सवाल पूछेंगे ये उनका एक ही जवाब देगा, क्योंकि इसके पास मतलब लिमिटेड इंसाइट्स होंगी, जो उसके पास डेटा प्री प्रोवाइडेड डेटा होगा ये उससे इंसाइट्स ड्रा करेगा। और अगर ये कर रहा है अनसुपरवाइज तो ये फिर उन नॉलेज को यूज़ करते हुए कंक्लूजन ड्रा करके देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये सर, ये सुपरवाइज यूज़ कर रहा है या अनसुपरवाइज?
अच्छा, इसके अंदर ना अटेंशंस होती हैं। अटेंशंस का मतलब ये है कि एक सेंटेंस को लिखने के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे पास ये सारी सुपरवाइज लर्निंग हो जाती है। अब अटेंशंस की वेस के ऊपर जो मेन हमारी डिस्कशंस के दरमियान क्या क्या अटेंशंस आती है, इज एम आर की अटेंशन हो सकती है, इस तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, सो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक सुपरवाइज लर्निंग आ रही है, ठीक। तो जितने भी आपके पास जनरेटिव मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये किसी हद तक मिक्सचर यूज़ कर लेते हैं, कुछ सेमी सुपरवाइज कर रहे हैं, कुछ सुपरवाइज, तो यहाँ पे सुपरवाइज हो रही है कि वहाँ पे अभी आप टेक्स्ट दे रहे हैं तो टेक्स्ट के अंदर आप चीज़ों को इन अटेंशंस को मेंशन करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ से एक आप फिर जब डेटा देते हैं तो वो इन डेटा के बेस के ऊपर वो चीज़ें कलेक्ट करके और फिर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर आंसर दे रहे थे आपको।
ये सुपरवाइज लर्निंग यूज़ कर रहे हैं
खुद? ये डिपेंड करता है, चैट जीपीटी अब मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, आई थिंक ये मोस्टली जनरेटिव है, ये तो ये सुपरवाइज लर्निंग कर।
लेकिन सर अगर इससे हम पूछते हैं मतलब क्वेश्चन कोई भी जो कि कंक्लूजन बेस्ड हो,
ठीक है,
के न्यू नॉलेज का हो, ये आल दो गलती सही लेकिन उसका जवाब जरूर देता है,
जवाब दे रहा है। देखें सुपरवाइज लर्निंग में हमें ये बताना होता है लेबल्स, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि लेबल्स जो है वहाँ पे जो चीज़ें यूज हो रही है ना वो आपकी ग्रामर और लिखने के स्टाइल के ऊपर वहाँ टेंशन आ रही है, जो टेंशन आ रही है सारी वो आपकी एक किस्म की वो सुपरवाइज लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये अनसुपरवाइज, मैंने अब मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा लेकिन चैट जीपीटी को, लेकिन क्योंकि जनरेटिव है ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं, तो लेकिन इसके अंदर नॉर्मली अनसुपरवाइज सेमी सुपरवाइज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अनसुपरवाइज का मतलब ये कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम यहाँ पे एज अ क्लस्टर मेकिंग के ऊपर सबमिट करा रहे हैं, ठीक हो गया, तो उससे जो है ये हमारे पास मिक्सचर निकल आता है समहाउ सुपरवाइज, जहाँ पे टेंशन आ रही हैं आगे फिर हम इसको नेक्स्ट फेज के अंदर फिर उसको अनसुपरवाइज करेंगे।
ये हमारे पास लर्निंग एजेंट है, एक
लर्निंग आ जाती है सर, ठीक है। मेरी असल में जनरेटिव एआई के ऊपर स्पेशलाइजेशन, मेरी नॉर्मली कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स है, एलएसटीएम्स के ऊपर है, स्टैक ऑटो एनकोडर्स के ऊपर है। और कोई क्वेश्चन?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आपने जिक्र किया है एआई का, इसमें ये बताइएगा एज अ प्रोफेशन आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको प्रोफेशंस में। एआई जिक्र किया कि लोग इसे बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एआई एज प्रोफेशन क्या हो सकता है और मुस्तकबिल में क्या इस बात का डर नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे तो ये बैन ना हो जाए कहीं, इस तरह की चीज़ें ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुँचने के ज़रिए, ये बता दीजिएगा।
चले बात का आंसर पहले देता हूँ, बैन होगा तो कौन करेगा, ठीक है, बैन होकर अगर एक कंट्री करता है तो दूसरा कंट्री अब इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नीड है, इवन के कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ एआई यूज़ ना हो रही हो, ठीक है। अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो मैं इस वक्त एआई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरे साथ कोलोब्रेशन में इस वक्त एग्रीकल्चर के लोग भी आ रहे हैं मेरे पास चीज़ें सीखने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इवन के पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामिक स्टडीज़ के लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं कि उनके एरिया के अंदर भी एआई इन्वॉल्व कर दी जाए, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको कानून बोर्ड के नाम से, कि पाकिस्तान के लीगल एडवाइसिस हम सिर्फ ये लिखते हैं मसला कि मेरी इस बंदे से लड़ाई हो गई है तो अब क्या होगा, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर में ये बता देता है कि आपके ऊपर ये दफात लगती हैं और आप उसको ये फेस कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर, अब आप इसका मतलब कि आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते, एआई अब तो हर जगह पे है। अगर आप ये कहेंगे ना बैन कर दें अपने मुल्क के अंदर, तो हम अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों से बहुत पीछे कर लेंगे। इवन के डिफेंस के अंदर हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा आजकल दौर ही सारा डिफेंस का है, हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो जहाज़ हैं, हमारे पास जितने वो सारे सारे एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे ह्यूमन एक्यूरेसी इतनी नहीं है जितनी हमारे पास एआई के ज़रिए हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो एआई अगला यूज़ कर रहे हैं तो हमें एआई के ज़रिए उसका तोड़ भी चाहिए, ठीक है। तो हम एआई की अपनी एक पूरी जो है इसको बैन नहीं कर सकते, और हर जगह प्रोफेशन के अंदर, इवन कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएं तो अक्सर अब आप देख रहे होंगे कि एनिमेटेड वीडियोस आ रही हैं, उन एनिमेटेड वीडियोस वो पूरी पूरी कहानी जनरेट होके ऑटोमेटिक आप सब लिखते हैं उसके ऊपर एनिमेटेड वीडियोज़ बन जाती हैं और वो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप सारे यूज़ कर रहे होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर एक मेटा का टैब आ रहा है, मेटा के टैब के अंदर आप लिखें कि मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम ये है, मुझे उसका लोगो जनरेट कर दें, ठीक है। वो आपको मेटा व्हाट्सएप का जो ऊपर सर्च वाला जो होता है वो मेटा सर्कल लगाओ, ठीक है, वहाँ से आपको कंपनी का लोगो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको सजेशन भी दे सकता है कि कंपनी हम अब क्या काम कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये आपको ये भी बता सकता है कि अब इस कंपनी को चलाने के लिए मेरे पास बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि बिजनेस कैसे चलता है, कहाँ कहाँ चलता है, लोगों ने किताबें लिखी हैं, लोगों ने एनिमेशंस बनाई हैं, लोगों ने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाए हैं, टिकटॉक के ऊपर आ रही है, वहाँ पे लोग कमा रहे हैं, और टेक्निकल बंदा और नॉन टेक्निकल बंदा दोनों मिल के जो है इस एरिया के अंदर इस वक्त कमा रहे हैं, ठीक है। आने वाली इंडस्ट्री इस वक्त अगले 3 से 4 साल के अंदर दुनिया की ये $15 trillion की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसको हम हर एरिया के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं।